एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने अमेरिका में समाज को देखने के नजरिए पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ये किताब है इजाबेल विल्कर्सन की बहुत ही चर्चित कास्ट, द ऑरिजिन्स ऑफ आर डिस्कंटेंट्स।
बिल्कुल, और ये किताब एक बड़ा अहम सवाल पूछती है कि अमेरिका जैसा देश जहां इतने नागरिक अधिकार आंदोलन हुए, कानून बदले, फिर भी समाज में इतनी गहरी खाई, इतनी असमानता क्यों है? मतलब क्यों कुछ समूह लगातार पीछे रह जाते हैं?
हाँ, ये सवाल तो है।
और विल्कर्सन का जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। वो कहती हैं कि हम समस्या को सिर्फ नस्ल या रेस के चश्मे से देख रहे हैं, जबकि असली जड़ कहीं ज्यादा गहरी है। एक अदृश्य लेकिन बहुत मजबूत जाति व्यवस्था में, कास्ट सिस्टम में।
हाँ, कास्ट अमेरिका में, ये तो काफी मतलब नया विचार है वहां के लिए। तो आज हम इसी कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार को समझने की कोशिश करेंगे। किताब के मुख्य तर्क क्या हैं, विश्लेषण कैसे करती हैं लेखिका, और सबसे ज़रूरी, ये हमें अपने आसपास की दुनिया के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है, इस पर हम गहराई से बात करेंगे।
हाँ, क्योंकि जैसा आपने कहा, ये सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं लगती, ये इंसानी समाज में विभाजन कैसे काम करता है, शायद उसकी कहानी है।
तो चलिए पहले लेखिका के बारे में जानते हैं। इजाबेल विल्कर्सन कौन है ये?
जी, इजाबेल विल्कर्सन सिर्फ लेखिका नहीं है, वो पुलित्जर पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, शिक्षाविद हैं। और ये जानना भी दिलचस्प है कि वो अमेरिकी पत्रकारिता के इतिहास में पुलित्जर जीतने वाली पहली अश्वेत महिला है, व्यक्तिगत रिपोर्टिंग के लिए जीतने वाली पहली अफ्रीकन अमेरिकी।
ओह, तो मतलब उनका काम काफी जमीनी रहा होगा।
बिल्कुल, दशकों की गहन पत्रकारिता लोगों की कहानियों को बहुत ही संजीदगी से सामने लाना, और साथ में गहरा ऐतिहासिक शोध। उनकी पिछली किताब द वॉर्मथ ऑफ द सन्स जबरदस्त कामयाब हुई थी।
हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। वो ग्रेट माइग्रेशन पर थी ना, लाखों अफ्रीकी अमेरिकियों का दक्षिण से उत्तर की ओर जाना।
जी हाँ, और उस किताब के शोध ने ही कहीं ना कहीं कास्ट के लिए जमीन तैयार की।
तो क्या बात उन्हें इस विषय पर लिखने के लिए खास बनाती है?
देखिए, उनकी खासियत ये है कि वो मुश्किल अकादमिक सिद्धांतों, ऐतिहासिक तथ्यों और आम लोगों के अनुभवों को एक साथ बुनकर एक ऐसी कहानी बना देती हैं जो आपको सोचने पर भी मजबूर करती है और भावनात्मक रूप से जोड़ती भी है।
मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि उसका असर।
हाँ बिल्कुल, वो दिखाती हैं कि ये सिद्धांत असल जिंदगी में लोगों पर कैसे असर डालते हैं। उनकी वो मानवीय सहानुभूति और बौद्धिक गहराई का मेल, वही इस किताब को इतना शक्तिशाली बनाता है।
तो आते हैं किताब के मूल आइडिया पर, ये अमेरिका में नस्ल और असमानता की पूरी बहस को कैसे बदलती है?
ये पूरी बहस को एक नया फ्रेमवर्क देती है। विल्कर्सन कहती हैं कि अमेरिका के सामाजिक विभाजन को समझने के लिए नस्ल काफी नहीं है, हमें जाति यानी कास्ट की अवधारणा को अपनाना होगा।
जाति, ये शब्द सुनते ही तो हमारे यहाँ सीधा भारत का ख्याल आता है।
हाँ, और विल्कर्सन इसकी बात करती भी हैं, लेकिन वो इसे एक ज्यादा व्यापक सामाजिक संरचना के तौर पर देखती हैं। उनका मुख्य तर्क ये है कि अमेरिका में जिसे हम नस्लीय पदानुक्रम, रेशियल हायरार्की कहते हैं, वो असल में एक बहुत कठोर और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली जाति व्यवस्था है।
अच्छा, मतलब कैसे?
ये समाज में इंसानी मूल्य की एक बनावटी रैंकिंग है, मतलब कौन कितना मूल्यवान है, ये जन्म से तय हो जाता है, और यही तय करता है कि किसे कितना सम्मान मिलेगा, किसके पास कितने संसाधन होंगे, किसकी काबिलियत पर शक किया जाएगा या किस पर भरोसा।
तो नस्ल का क्या रोल है इसमें?
यहीं पर विल्कर्सन का वो मशहूर रूपक आता है, जाति हड्डियां हैं, नस्ल त्वचा है।
हड्डियां और त्वचा, मतलब
नस्ल जैसे त्वचा का रंग, वो बाहरी निशान है जिसे देखकर जाति थोपी जाती है, वो त्वचा की तरह है। पर असली ढांचा जो अंदर है, जो मजबूत है, अदृश्य है, वो जाति है, हड्डियों की तरह।
वाह, ये तो काफी गहरा रूपक है।
तो किताब का मकसद इसी अदृश्य ढांचे को दिखाना है।
बिल्कुल,
इसका पर्दाफाश करना, ये कैसे बना, इसे आज भी कैसे बनाए रखा जाता है, और ये आज के अमेरिकी जीवन, राजनीति और हर व्यक्ति की किस्मत को कैसे आकार दे रही है।
आपने कहा था कि वो अमेरिका की तुलना एक पुराने घर से करती हैं।
हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण रूपक है। वो कहती हैं कि अमेरिका एक पुराना घर है, हम जो आज इसमें रह रहे हैं हमने इसे बनाया नहीं,
ठीक है,
लेकिन इसकी नींव में जो दरारें हैं, जो संरचनात्मक खामियां हैं, यानी ये जाति व्यवस्था, वो हमें विरासत में मिली हैं और अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन्हें ठीक करें। भले ही हमने इन्हें पैदा ना किया हो, हमें इस घर की मरम्मत करनी होगी।
ये जिम्मेदारी वाली बात अहम है।
और अपने तर्क को मजबूत करने के लिए विल्कर्सन तुलना करती हैं अमेरिका की जाति व्यवस्था की तुलना भारत की जाति व्यवस्था से, खास तौर पर दलितों के साथ जो होता है उससे, और नाजी जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ जो नस्लीय पदानुक्रम बनाया गया था उससे।
ओह, ये तुलना तो काफी मतलब विवादित भी हो सकती है।
हाँ, हो सकती है, लेकिन उनका मकसद इन तीनों को बराबर बताना नहीं है। वो ये नहीं कह रही कि तीनों एक जैसे हैं। वो दिखाना चाहती हैं कि समाज को बांटने और किसी समूह को दबाने के तर्क और तरीके, जैसे शुद्धता अशुद्धता का विचार, शादी विवाह पर रोक, हिंसा का इस्तेमाल, ये अलग अलग समाजों में कितने मिलते जुलते हो सकते हैं।
अच्छा, मतलब पैटर्न एक जैसा हो सकता है।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि सिर्फ अमेरिका की या भारत की या जर्मनी की अनोखी समस्या नहीं है, ये इंसानी समाज में प्रभुत्व जमाने का एक जाना पहचाना पैटर्न है।
चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। विल्कर्सन ने कहा कि ये व्यवस्था है, तो ये काम कैसे करती है? उन्होंने इसके कुछ सिद्धांत बताए हैं।
हाँ, यहीं पर किताब का विश्लेषणात्मक दिल है। वो बताती हैं जाति के 8 स्तंभ, द 8 पिलर्स ऑफ कास्ट। ये वो 8 बुनियादी सिद्धांत, या कह लीजिए तंत्र हैं, जो किसी भी जाति व्यवस्था को खड़ा रखते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, भारत हो, या नाजी जर्मनी रहा हो।
8 स्तंभ, अच्छा, कौन कौन से हैं? कुछ मुख्य?
हम 8ों पर तो शायद विस्तार से नहीं जा पाएंगे, पर कुछ मुख्य समझना जरूरी है। पहला, दैवीय इच्छा या प्रकृति का नियम, मतलब ये मानना कि ये ऊंच नीच भगवान ने बनाई है या ये कुदरती है।
हाँ, जैसे अमेरिका में गुलामी को सही ठहराने के लिए बाइबल का इस्तेमाल हुआ, या भारत में कर्म सिद्धांत से जुड़ना।
बिल्कुल, इससे ये व्यवस्था सवालों से परे हो जाती है, है ना? दूसरा अहम स्तंभ है वंशानुगतता। आपकी जाति जन्म से तय होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, आप इसे बदल नहीं सकते।
और तीसरा आपने कहा था शादी ब्याह वाला।
हाँ, वो शायद सबसे सख्त होता है, अंतर्विवाह और संबंधों पर नियंत्रण, अपनी जाति के बाहर शादी या संबंध पर कठोर पाबंदी। क्यों? ताकि वो जिसे जातिगत शुद्धता कहते हैं वो बनी रहे।
इसके उदाहरण तो बहुत हैं। अमेरिका में एंटी मैसेजिनेशन कानून थे, जर्मनी में नूरनबर्ग कानून,
और भारत में तो आज भी अंतरजातीय विवाह कितना बड़ा सामाजिक मुद्दा है।
बिल्कुल, और क्या है स्तंभ?
फिर एक है शुद्धता बनाम प्रदूषण का विचार। ऊंची जाति शुद्ध, नीची जाति अपवित्र या प्रदूषित, इसी सोच से छुआछूत अलगाव पैदा होता है। अलग नल, अलग बर्तन, अलग बैठने की जगह।
ये तो बहुत जाना पहचाना लगता है।
हाँ, और एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है अमानवीकरण। निचली मानी जाने वाली जाति को इंसान से कमतर समझना, उन्हें पशु जैसा, बुद्धिहीन, अनैतिक बताना, ताकि उन पर अत्याचार करना आसान हो जाए, उसे जायज ठहराया जा सके।
ये तो बहुत ही भयानक है।
इनके अलावा भी हैं, जैसे व्यवसायिक पदानुक्रम, कुछ काम सिर्फ ऊंची जातियों के लिए, कुछ सिर्फ नीची जातियों के लिए, आतंक और क्रूरता का इस्तेमाल व्यवस्था बनाए रखने के लिए, हिंसा, डर का माहौल, जैसे अमेरिका में लिंचिंग या भारत में दलितों पर होने वाले अत्याचार, और आखिर में अंतर्निहित श्रेष्ठता बनाम हीनता, ये मानना कि ऊंची जाति स्वाभाविक रूप से बेहतर है और नीची जाति स्वाभाविक रूप से कमतर।
तो ये 8 स्तंभ मिलकर पूरा ढांचा खड़ा करते हैं।
जी हाँ, और विल्कर्सन दिखाती हैं कि ये सिर्फ कानून की बातें नहीं है, ये लोगों की सोच, उनके रोजमर्रा के व्यवहार में गहरे बसे हुए हैं।
तो ये सिद्धांत रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे दिखते हैं, मतलब छोटे स्तर पर?
यहीं पर विल्कर्सन जाति के जाल, द टेंटिकल्स ऑफ कास्ट की बात करती हैं। ये वो सूक्ष्म इशारे हैं, वो अनकहे नियम, वो छोटे छोटे अपमानजनक व्यवहार जिन्हें आजकल माइक्रो अग्रेशन कहते हैं।
जैसे?
जैसे किसी खास समूह के व्यक्ति की काबिलियत पर बार बार शक करना, या किसी की पृष्ठभूमि के आधार पर उसके बारे में पहले से ही राय बना लेना। ये सब उस अदृश्य जाति व्यवस्था के धागे हैं जो हमें रोज जकड़े रहते हैं।
और इसका मनोवैज्ञानिक असर भी तो होता होगा।
बिल्कुल, एक तरफ है स्टीरियोटाइप थ्रेट, ये वो डर है जो निचली मानी जाने वाली जाति के लोग महसूस करते हैं कि कहीं उनका कोई काम उनके समूह के बारे में बनी हुई नकारात्मक धारणाओं को सच न साबित कर दे। ये डर उनके प्रदर्शन को भी प्रभावित करता है।
और ऊंची जाति वालों पर?
उनमें अपनी स्थिति खोने का डर, जिसे स्टेटस एंग्जाइटी कहते हैं, वो हो सकता है।
तो इस पूरी व्यवस्था के परिणाम क्या होते हैं, नुकसान क्या हैं?
विल्कर्सन जाति के परिणाम द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कास्ट पर विस्तार से लिखती हैं। निचली जातियों के लिए तो ये साफ है, सामाजिक भेदभाव, स्वास्थ्य में भारी असमानता, संपत्ति, शिक्षा, यहाँ तक कि औसत उम्र लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम होना, लगातार तनाव और भेदभाव में जीने से कई तरह की बीमारियां भी ज्यादा होती हैं।
लेकिन क्या ये सिर्फ निचली जातियों को ही नुकसान पहुंचाती है?
नहीं, और यही विल्कर्सन का एक बहुत अहम तर्क है। वो कहती हैं कि ये ऊंची जाति के लोगों को भी नैतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से खोखला करती हैं। दूसरों को नीचा दिखाकर अपनी पहचान बनाना, ये एक तरह की आध्यात्मिक और नैतिक सड़न पैदा करता है। सहानुभूति खत्म होती है।
अच्छा।
हाँ, वो यहाँ तक इशारा करती हैं कि अमेरिका में कुछ श्वेत लोगों में जो डेथ्स ऑफ डिस्पेयर बढ़ रहे हैं, आत्महत्या, ड्रग ओवरडोज, शायद उनका संबंध कहीं ना कहीं उनकी जातिगत श्रेष्ठता की भावना को मिल रही चुनौती से भी हो सकता है।
ये तो काफी गहरा विश्लेषण है।
और जब भी इस व्यवस्था को कोई चुनौती देता है, जब भी निचली जातियां थोड़ी आगे बढ़ती हैं, तो व्यवस्था पलटवार करती है। इसे विल्कर्सन बैकलैश कहती हैं।
बैकलैश मतलब प्रतिक्रिया?
हाँ, एक तीखी हिंसक प्रतिक्रिया। इतिहास गवाह है, सुधारों के बाद अक्सर ऐसा होता है। मकसद होता है पुरानी ऊंच नीच को फिर से कायम करना।
जैसे अमेरिका में पुनर्निर्माण काल के बाद जिम क्रो कानून आ गए?
बिल्कुल, या जैसे बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने के बाद जो राजनीतिक माहौल बना। विल्कर्सन उसे भी जातिगत बैकलैश के उदाहरण के तौर पर देखती हैं। ये समझना जरूरी है कि ये व्यवस्था बदलाव का आसानी से स्वागत नहीं करती, वो अपना बचाव करती है।
तो फिर क्या कोई रास्ता है इससे निकलने का? क्या ये पुराना घर ठीक हो सकता है?
किताब का आखिरी हिस्सा जागृति इसी उम्मीद पर बात करता है। विल्कर्सन कहती हैं कि जाति से मुक्ति के लिए एक सामूहिक जागृति चाहिए। ये किसी पर दोष मढ़ने या अपराध बोध महसूस करने के बारे में नहीं है।
तो फिर किस बारे में है?
ये जिम्मेदारी लेने के बारे में है। ये समझने के बारे में है कि हम सबका भविष्य एक दूसरे से जुड़ा है।
वो जर्मनी का उदाहरण भी देती हैं, है ना?
हाँ, जहाँ उन्होंने अपने नाजी अतीत का सामना करने की कोशिश की है।
वर्गनहाइट्स बेवेल्टेगुंग।
हालांकि वो मानती हैं कि ये मॉडल भी परफेक्ट नहीं है। समाधान के तौर पर विल्कर्सन कट्टर सहानुभूति, रेडिकल एम्पथी का विचार रखती हैं।
कट्टर सहानुभूति, ये क्या है? सिर्फ हमदर्दी से अलग?
हाँ, ये सिर्फ दया या हमदर्दी से ज्यादा है। ये एक सचेत कोशिश है दुनिया को दूसरे इंसान के नजरिए से देखने की, उसकी भावनाओं को महसूस करने की। और हर इंसान में, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, वो साझा इंसानियत देखने की।
ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर करना मुश्किल होगा।
मुश्किल तो है, पर शायद यही रास्ता है।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा की कुछ मुख्य संदेश निकालें, तो सबसे पहला और जरूरी क्या होगा?
मेरे ख्याल से सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि असली संरचना जाति है, नस्ल तो बस उसका एक बाहरी रूप है। ये सोच हमें व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से हटाकर उस सिस्टम को देखने में मदद करती है जो असमानता पैदा कर रहा है।
हाँ, ये बुरे लोग बनाम अच्छे लोग की बहस से आगे ले जाता है। दूसरा संदेश?
दूसरा कि ये ऊंच नीच की व्यवस्था पूरी तरह बनावटी और अनैतिक है। ये नेचुरल नहीं है, इसे इंसानों ने बनाया है और इसे ताकत, विचारधारा और हिंसा से बनाए रखा जाता है। इसे समझना ही इसके खिलाफ पहला कदम है।
तीसरा, आपने वो तुलना वाली बात कही थी।
तीसरा ये कि उत्पीड़न का तर्क दुनिया भर में समान हो सकता है। अमेरिका, भारत, जर्मनी, अलग अलग संदर्भ पर तरीके मिलते जुलते। अमानवीकरण, शुद्धता का विचार, डर का इस्तेमाल, ये दिखाता है कि ये एक वैश्विक मानवीय पैटर्न का हिस्सा है।
और चौथा कि जाति सिर्फ इतिहास की बात नहीं, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में है।
बिल्कुल, वो छोटे छोटे इशारे, वो अनकहे नियम, किसे शक का लाभ मिलता है, किसकी बात ज्यादा वजन रखती है, ये सब उसी के जाल हैं।
और पांचवा, शायद वो सहानुभूति वाली बात।
हाँ, कि ये व्यवस्था सभी को नुकसान पहुंचाती है, नीचे वालों को भी और ऊपर वालों को भी, उनकी इंसानियत को कम करके। और आखिर में कि मुक्ति का रास्ता कट्टर सहानुभूति से ही निकलेगा, दूसरों के अनुभवों को गहराई से समझने की कोशिश से।
किताब में कई यादगार पंक्तियां भी हैं।
आपने एक तो बताई थी, जाति हड्डियां हैं, नस्ल त्वचा है।
हाँ, वो तो बहुत शक्तिशाली है। एक और है, जाति एक अंधेरे थिएटर में मूक दर्शक की तरह है, हाथ में टॉर्च लिए हमें प्रदर्शन के लिए हमारी नियत सीटों पर मार्गदर्शन करती है।
वाह, मतलब ये चुपचाप बिना बताए हमें हमारी जगह दिखा देती है।
बिल्कुल, हमें पता भी नहीं चलता और हम अपनी तयशुदा भूमिका निभा रहे होते हैं।
और एक वो सीधी बात कहने वाली पंक्ति भी थी।
हाँ, आपको किसी तथ्य पर राय रखने की जरूरत नहीं है, आप सूरज पर भी राय रख सकते हैं।
मतलब जब हम व्यवस्थागत असमानता के ठोस सबूत देखते हैं, जैसे दौलत या स्वास्थ्य में भारी अंतर, तो ये कोई राय का मामला नहीं रह जाता, ये एक हकीकत है। इसे मानना या न मानना हमारी मर्जी पर नहीं होना चाहिए।
ये तो बहुत सटीक है।
और अंत में एक उम्मीद जगाने वाली पंक्ति, जाति के बिना दुनिया में झूठे आसन के बजाय समान स्थिति होगी, श्रेष्ठता की झूठी भावना के बजाय हर किसी में मानवता की विनम्र पहचान होगी।
ये एक विजन देता है कि अगर हम इन बनावटी दीवारों को गिरा दें तो समाज कैसा हो सकता है।
हाँ, सच्ची बराबरी और साझा इंसानियत पर आधारित।
ये सब सुनने और समझने में बहुत गहरा है, पर सवाल उठता है कि आम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन विचारों का क्या करे, इनका व्यवहारिक इस्तेमाल क्या है।
देखिए, सबसे पहला कदम तो है आत्मचिंतन, रुक कर सोचना, समाज में मेरी अपनी जगह क्या है, मेरे अपने अंदर कौन से पूर्वाग्रह हैं जिन्हें शायद मैं देख नहीं पा रही हूँ।
ये तो मुश्किल काम है, अपने अंदर झांकना।
मुश्किल है पर जरूरी है। और दूसरा, उससे भी ज्यादा जरूरी, कट्टर सहानुभूति का अभ्यास करना। ये सिर्फ सोचने की नहीं, करने की चीज है। दूसरों के अनुभवों को ध्यान से सुनना, खास तौर पर उनकी जिनकी आवाज कम सुनी जाती है।
मतलब एक्टिव लिसनिंग।
हाँ, उनकी कहानियों को जानना, उनके नजरिए को समझने की कोशिश करना बिना जज किए।
और काम की जगह पर या समाज में,
काम की लगा पर हम देख सकते हैं कि क्यों कुछ खास तरह के लोग ही आगे बढ़ पाते हैं, कहीं कोई अदृश्य ढांचा तो काम नहीं कर रहा। ये हमें योग्यता मेरिटोक्रेसी के विचार पर भी सवाल उठाने को कहता है। क्या सच में सबको बराबर मौके मिलते हैं, या कुछ लोगों की रेस शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी जाती है।
हाँ, ये सोचने वाली बात है।
सामाजिक और राजनीतिक तौर पर ये हमें खबरों को, घटनाओं को ज्यादा गहराई से समझने में मदद करता है। जब हम समाज में किसी बदलाव के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया, बैकलैश देखते हैं, तो हम उसे सिर्फ राजनीतिक विरोध ना समझकर जाति व्यवस्था के आत्मसंरक्षण के तौर पर भी देख सकते हैं।
तो ये विश्लेषण का एक नया टूल देता है।
बिल्कुल, और जो लोग सामाजिक न्याय के लिए काम कर रहे हैं उन्हें भी ये समझने में मदद करता है कि सिर्फ लक्षणों का इलाज काफी नहीं, व्यवस्था की जड़ों पर, उन 8 स्तंभों पर चोट करनी होगी।
तो कुल मिलाकर इस किताब से सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि हमारे समाज का विभाजन ये अचानक नहीं हुआ, ये कुछ बुरे लोगों का काम नहीं है, ये एक सोची समझी सदियों पुरानी सामाजिक संरचना का नतीजा है, और विल्कर्सन उसे जाति कहकर हमें उसे समझने की भाषा दे रही है।
हाँ, और एक बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये व्यवस्था आखिरकार सबको कैद करती है, न सिर्फ उन्हें जिन्हें नीचे रखा गया है, बल्कि उन्हें भी जो ऊपर हैं, उनकी भी इंसानियत को कहीं ना कहीं सीमित करती है।
ये बातचीत को व्यक्तिगत दोष से हटाकर एक सामूहिक जिम्मेदारी की ओर ले जाती है।
बिल्कुल, हमें एक ऐसी विरासत मिली है जिसे सुधारना हम सबका काम है।
ये किताब एक आईना भी है जो कड़वी सच्चाई दिखाती है और एक उम्मीद भी जगाती है कि बदलाव मुमकिन है।
हाँ, ये अमरीका की कहानी को दुनिया भर के पैटर्न से जोड़कर इसे और भी बड़ा और प्रासंगिक बना देती है।
और अंत में संदेश यही है कि भले ही ये पुराना घर खामियों से भरा है,
हाँ, नीम कमजोर है,
पर हम में साहस, समझदारी और सबसे बढ़कर कट्टर सहानुभूति के जरिए इसकी मरम्मत करने की ताकत है। ये आसान नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, पर ये मुमकिन है और जरूरी भी।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक्तिर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।